श्रीमद्भागवत कैंटो 7 चैप्टर 9 श्लोक क्रमांक 46 जोश कमल लोचन प्रभु श्री श्री राधा गिरिधारी टेम्पल इस्कॉन मुरादाबाद।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 46। मौन व्रत श्रुत तप अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहा జపాం సమాదయః ఆపవర్గ్యాః ప్రాయః పరం పురుష తే తు అజితేంద్రియాణాం వార్తాః భవంతి ఉత న వా అత్ర తు నాంబికానాం. మౌన వ్రత శ్రుత తపోధ్యయన స్వధర్మ మౌన వ్రత శ్రుత తపోధ్యయన స్వధర్మ మౌన వ్రత శ్రుత తపోధ్యయన స్వధర్మ వ్యాఖ్యారహో జప సమాదయ ఆపవర్గ్యాః వ్యాఖ్యారహో జప సమాదయ సాపవర్గాః వ్యాఖ్యారహో జప సమాదయ ఆపవర్గ్యాః ప్రాయః పరం పురుషతే తే తు అజితేంద్రియాణాం ప్రాయః పరం పురుషతే త్వజితేంద్రియాణాం వార్తా భవంత్యుతన వాత్రతు దాంభికానాం వార్తా భవంత్యుతన వాత్రతు దాంభికానాం వార్తా భవంత్యుతన వాత్రతు దాంభికానాం మౌనవ్రత శ్రుత తపోధ్యయన స్వధర్మ మౌన వ్రత శ్రుత తపోధ్యయన స్వధర్మ వ్యాఖ్యారహో జప సమాదయాపవర్గ్యాః ప్రాయ పరం పురుషతే త్వజితేంద్రియాణాం వార్తా భవంత్యుతన వార్తతు దాంబికానాం.
Yeah.
माताजी, माताजी చుప్పి వ్రత వ్రత శ్రుత వైదిక జ్ఞాన తప తపస్య అధ్యయన శాస్త్రం కా అధ్యయన స్వధర్మ వర్ణాశ్రమ ధర్ కా పాలన వ్యాఖ్యా శాస్త్రం కీ వివేచన రాహ ఏకాంత స్థాన్ మే రహనా జప్ మంత్ర కా ఉచ్చారణ సమాధయ సమాధి మే రహనా ఆపవర్గ్య మోక్ష మార్గ మే ప్రగతి కర్నే కే లియే किए जाने वाले 10 प्रकार के कार्य प्रायः सामान्यतः परम एक एकमात्र साधन पुरुषः हे प्रभु ते वे सब तू लेकिन अजितेन्द्रियाणाम उन व्यक्तियों का जो इंद्रियों के जो उन व्यक्तियों का जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते वार्ता जीविका भवंती है उत इसलिए ऐसा कहा जाता है ना, ना नहीं वा अथवा अत्र इस संबंध में तू लेकिन ढांबिका नाम मिथ्या गर्व करने वाले व्यक्तियों अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 संस्तुत विधियों हैं, विधियां हैं। मौन रहना, हर एक से बातें ना करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना, मोक्ष की ये विभिन्न विधियों सामान्यतः व्यापार है और उन लोगों के लिए जीविकोपार्जन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। क्योंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतएव हो सकता है कि ये विधियों सफल ना भी हो। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम दुन्वन्ति कार्ष्णी न निहारमिव भास्करः। ऐसे विरल पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, वही पाप कर्मों के कर पतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे वह फिर कभी ना उगे। वह इस केवला भक्ति के द्वारा कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है। मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसे मुक्ति कोई कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है, तपसा ब्रह्मचर्य समेन दमेन च, किंतु वे सब तपस्या पर ही आश्रित रहती हैं और यह ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों के पूर्ण समर्पित हैं, वे मौन व्रत तथा अन्य विधियों का फल केवला भक्ति करने करके स्वतः प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में ये सारी विधियां उतनी शक्तिशाली नहीं है। यदि कोई भक्ति करता है तो वे सब के सब सरलता से प्रसन्न संपन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ देना नहीं। जीव तो बोलने के लिए ही है, यद्यपि कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में एक दिन मौन रहते हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करता। मौन का अर्थ है मूर्खतापूर्वक भाषण ना करना। सामान्यता सभाओं में, समारोह में तथा बैठकों में लोग मेंढकों की तरह मूर्खतापूर्वक भाषण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इस वाचो वेगम कहा है, जो व्यक्ति बोलना चाहता है वह अपने को बड़ा भारी वक्ता दिखलाता है, किंतु अच्छा यही हो कि बोलने की उपेक्षा वह मौन रहे। अतएव मौन की यह विधि ऐसे व्यक्तियों के लिए संस्तुत है जो व्यर्थ बोलने की आदि है। जो भक्त नहीं होता वह व्यर्थ ही बोलता रहता है, क्योंकि उन्हें कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं होती। इस तरह वह जो कुछ भी बोलता है वह माया द्वारा प्रभावित रहता है और इसलिए उसकी तुलना मेंढकों से की गई है। किंतु जो भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करने या मोक्ष के लिए ये 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं है। केवलया भक्तिया, यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियों स्वतः संपन्न हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव यह है कि ऐसे विधियां अजितेंद्रिय के लिए हैं, अर्थात उनके लिए जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकते, किंतु भगवान पहले से अपनी इंद्रियां जीत चुके होते हैं। सर्वोपाद निर्मुक्तम तत्प्रत्यय निर्मलम, भक्त पहले से भक्ति कलाप में मुक्त रहता है। अब अथैव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव प्रतिष्ठा तारे निर्जनेर धरे तव हरिनाम केवल कैतव। ऐसे अपने अनेक लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप एकांत स्थान में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करने अभक्तों के से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है। अतएव अब तक कोई कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रगत ना हो उसे हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। जिनके पास 24 घंटे पवित्र नाम कीर्तन की कीर्तन के अलावा कोई कार्य नहीं था, प्रहलाद महाराज ऐसी विधि का तिरस्कार नहीं करते, वे इस से स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान की अक्रिय सक्रिय सेवा की इन विधियों में से किसी एक के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई मिथ्या अहंकार से नहीं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ओम ज्ञातविरांदस्य ज्ञानांजनशला चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयेऽहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सदैव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्त नमोऽस्तुते। तत्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतराघ विश्वास गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रहलाद महाराज की भी सत्यों के अंतर्गत ये श्लोक है। पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहा कि किस प्रकार ये जो इंद्रिय तृप्ति है, खास करके मैथुनी जीवन है, किस प्रकार है, खुजली करने के बराबर है। जब खुजली किया जाता है तो समय अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद और परेशानी होती है, खून निकलता है और दुख लगता है। तो वैसे लोग क्या करते हैं, जब दुख लगता है तो सोचते हैं बस ये जो खुजली किया है, ये जो इचिंग सेंसेशन है, इससे दुख मिलता है तो इससे मुझे मुक्त होना है। यानी ये जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, इससे मुझे मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए अनेकों रास्ते ढूंढते हैं। तो खास करके इस श्लोक में 10 प्रकार की विधियों का वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा लोग सोचते हैं कि मैं अभी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ये कहते खंडन करते हैं कि ये जो 10 विधियां हैं जो मोक्ष के साधन हैं, अस्तित्व में ये मोक्ष के साधन नहीं है, जिसके द्वारा वो केवल प्रयतः या प्राय, ये जो शब्द आया इस श्लोक में, हाँ प्राय, तीसरे लाइन के जो पहला शब्द है प्राय, मतलब वो पूर्ण तरीके से मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा लगता है कि मैं मुक्त हो रहा हूँ या मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ, अपवर्ग को प्राप्त कर रहा हूँ, तो ये अपवर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये श्लोक में एक शब्द है, वो है अपवर्ग, अपवर्ग्या। अपवर्ग्या का अर्थ क्या है आप सबको मालूम है, प वर्ग है अपवर्ग है, प वर्ग मतलब परिश्रम, प पा पा भा बा मा, तो सबसे पहला सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, दे आर ऑल वर्किंग हार्ड, पा का अर्थ है परिश्रम। तो ये परिश्रम क्यों करता है व्यक्ति, क्योंकि उनके हृदय में बहुत सारे कामनाएं, दे आर वर्किंग हार्ड बिकॉज दे आर हैविंग डिजायर्स। अगर किसी के भौतिक इच्छा ना हो तो क्यों काम करेगा, इस जगत में लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छा है। तो लोग ज़्यादा काम क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा भौतिक इच्छा है। अगर उनके पास भौतिक इच्छा ज़्यादा नहीं है वो ज़्यादा काम नहीं करता, वो शांति से जितना ज़रूरी है उनके शरीर और शरीर मेंटेनेंस के लिए उतना ही काम करता है। तो ये अविद्या काम कर्म भी ही, अविद्या की वजह से हमारे हृदय में काम उत्पन्न होता है, तो ये काम को पूर्ण करने के लिए कर्म भी ही काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना होगा। वैसे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है लेकिन वो करना पड़ता है, क्यों, उनके हृदय में काम है। तो पिछले श्लोक में काम का वर्णन हुआ है, तो वो सोचता है कि मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ, परिश्रम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्धिक इच्छाओं की वजह से, इसलिए मैं बौद्धिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता हूँ, ऐसा विचार रखता है। लेकिन उसका विधि क्या है, उसका विधि क्या ढूंढता है, विधि सोचता है कि मौन व्रत करूंगा इत्यादि, 10 विधि का वर्णन करेंगे अभी। तो सबसे पहला पा, पा मतलब परिश्रम, इतना परिश्रम करता है तो उसके मुख से फेण निकलता है, दूसरा फा जो है वो फेण है, और इतना परिश्रम करने के बाद उनको कुछ सुख प्राप्त होता है, वो सुख के कुछ थोड़ा सा प्राप्त होने के बाद वो सुख के प्रति आसक्त हो जाता है, इसलिए वो बंधन हो जाता है। ये आसक्ति है उसको बंधन कहा गया, ये छोटा बा जो है वो बंधन है, फा फा बा, ये बंधन है। बंधन क्यों है, आसक्ति है। अस्तित्व में ये जो भौतिक चीजें हैं हमको नहीं पकड़ा है, हम उन भौतिक चीजों को पकड़े हैं, ये भौतिक आसक्ति हमारे वजह से, भौतिक वस्तुओं की वजह से नहीं है, पत्नी की वजह से नहीं है, घर की वजह से नहीं है, धन की वजह से नहीं है, हम उनके प्रति आसक्ति है इसलिए वजह से हमको वो दुख लगता है, इसलिए उसको बंधन कहा जाता है। ये बंधन की वजह से ही कितना भी फेंड निकले लेकिन फिर भी हम होंगे कामयाब, कितना भी फेंड निकले फिर भी मैं उसको प्राप्त करूंगा, फिर वापस प्रयास करता है, वापस बार बार प्रयास करता है, वो थकने के बाद फिर थोड़ा सा आराम करता है, फिर वापस मेहनत करता है, लेकिन उनको जरा सा भी होश नहीं है, मैं इतना मेहनत किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, आज मेहनत करूंगा तो भी मिलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मेहनत करता है, वो छोड़ता नहीं है। ये भौतिक जीवन का लक्षण है, ये आसक्ति और बंधन की वजह से। जैसे प्रहलाद महाराज अन्य श्लोक में इस बात को कहते हैं कि जैसे पुनः पुनः चर्वित चर्वण आना, कल चर्वण किया था उसको कुछ रस नहीं मिला, लेकिन आज ट्राई करूंगा मैं, आज चर्वण करके फिर देखूंगा मैं कुछ रस मिलता है क्या। तो वैसे बंधन की वजह से ये आशा टूटती नहीं है, तो ये बंधन हमको वापस वही कार्य करने में प्रेरित करता है जिस कार्य के द्वारा हम विफल थे, इसको बंधन कहा जाता है। वाह, तो ये बंधन ये हमको भय तक लेके जाता है। दूसरा भाग है भय। क्यों भय क्या है? भय ये है कि मैंने इतना मेहनत किया, मेहनत करने की वजह से कुछ वस्तुएं मुझे प्राप्त हुए, अस्तित्व में ये मुझे दुख देने वाली वस्तु है, लेकिन ये दुख देने वाली वस्तुएं मुझसे खो ना जाए, इसका भय रहता है। देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स, फियर। मैं इतना मेहनत किया, इतने वस्तुओं को प्राप्त किया, मुझे मेरे हाथ से छीनना नहीं चाहिए, मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा संपत्ति, ये सब मुझसे छीन ना जाए, मेरे साथ ही हमेशा होना चाहिए। और दूसरा भय क्या है? आगे इतना मेहनत किया, मुझे ये फल मिलेगा कि नहीं, ये भय है। तो ये दूसरा भा है, का फा भा भा मा। तो अंततः पूरा जीवन इस प्रकार बिताते बिताते अंततः उसको मृत्यु प्राप्त होता है। ये पांच चीजों को क्या कहा जाता है? अवर्ग कहा जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपवर्ग को प्राप्त करना चाहता है, तो लेकिन पूरा बुद्धिमान नहीं है, आधा बुद्धिमान है, तो उस व्यक्ति का लक्षण वर्णन हुआ है। आधा बुद्धिमान कौन है? वो अपवर्ग को प्राप्त करना चाहता है, ये अपवर्ग से मुक्त होना चाहता है, लेकिन वो ठीक तरीके से रास्ता ढूंढ नहीं पाता। सही रास्ता क्या है? वो केचित केवलया भक्त्या, जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में केचित केवलया भक्त्या वासुदेव प्रायणः, ये श्लोक को कोट करते हैं। जो केवला भक्ति को स्वीकार किए बिना वो सोचता है कि मैं अपवर्ग को प्राप्त करूंगा, लेकिन उसका क्या सहारा लूंगा? मैं तपस्या का सहारा लूंगा, मैं ये 10 विधियों का जिस श्लोक में वर्णन हुआ है उसका सहारा लूंगा। क्योंकि ये भौतिक स्थिति से मुक्त होना है, हमको पूर्ण आध्यात्मिक साधन को स्वीकार करना होगा। आप भौतिक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए कोई भौतिक साधन को स्वीकार नहीं कर सकते। भगवद्गीता में भगवान इस बात को कहते हैं कि वेदेश यज्ञेश तपस्व दानेश पुण्यफलम प्रतिष्ठम योगी प्रतिष्ठम परम स्थान उपेक्षित। वेदेश यज्ञेश तपस्व दानेश पुण्यफलम प्रतिष्ठम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि वेदाध्ययन के द्वारा हो, पुण्य कार्य के द्वारा हो, अनेक प्रकार की तपस्या के द्वारा जो फल हम प्राप्त करते हैं वो फल हम केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी इन सारे चीजों को करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भक्ति के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इन साधनों को स्वीकार करूंगा, ये साधनों को स्वीकार करने के द्वारा मैं क्या प्राप्त करूंगा? अपवर्ग को प्राप्त करूंगा। अपवर्ग की प्राप्ति भौतिक साधन के द्वारा नहीं होता है। तो सबसे पहला इस श्लोक में वर्णन हुआ है मौना, मौना। मौन का अर्थ है कि कुछ लोग मौनी बाबा रहते हैं। प्रभुपाद जी मौनी बाबा को बहुत क्रिटिसाइज किए हैं। तो वो एक व्यक्ति है जो अनेकों सालों से चुप बैठा है, कोई कुछ बात नहीं करता है। ये निश्चित रूप में मौन व्रत धारण करने से कुछ तो शक्ति आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति जो है हमारी वचन शक्ति के द्वारा जाता है। हमारे जो 24 घंटे कार्यकलापों में सबसे ज्यादा कार्य क्या है? बातचीत करते हैं। हमारा जिह्वा जितना हिलता है और कोई शरीर का अंग हिलता नहीं है। आप हाथ को ऊपर नीचे ऐसे हिलाओ, कितना देर हिलाएंगे? 5 मिनट 10 मिनट में थक जाता है। पैर को भी हिलाओ थक जाता है, लेकिन जिह्वा 24 घंटा हिलता है लेकिन थकान महसूस नहीं होता है कि नहीं? कितना हिलता है, इट इज ऑलवेज मूविंग। तो सबसे ज्यादा शक्ति जो है बातचीत करने के द्वारा होता है। जो व्यक्ति मौन रखता है उनको निश्चित रूप में वो कुछ शक्ति प्राप्त होता है, और साथ साथ में शक्ति के द्वारा ही नहीं थोड़ा शांति भी प्राप्त होता है, क्योंकि जितना कम बात करेंगे उतना शांति मिलता है। लेकिन ये मौन व्रत रखने के द्वारा अपवर्ग को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये कहीं वर्णन नहीं है। वो निश्चित रूप में कुछ भौतिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है, कुछ शांति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये जो मौन व्रत के द्वारा मुक्ति का, मौन व्रत जो है मुक्ति का साधन नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं मैं ये जो भौतिक दुख है, अपवर्ग है, उसको कुछ भौतिक सामर्थ्य के द्वारा, मटेरियल सिचुएशन, मटेरियल प्रोसेस के द्वारा उसको मैं दमन कर सकता हूँ। ये नहीं होता है, इट डजेंट हैपन लाइक दैट। तो जैसे आज मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट लोग भी इसी बात को सोचते हैं, वो सोचते हैं भौतिक दुखों को हम भौतिक साधन के द्वारा हम निपटा सकते हैं। नहीं, अस्तित्व में, हाँ एक जगह कहाँ वो श्लोक में भूल गया कि लिखा हुआ है, जो भौतिक दुख है वो दुख का निवारण करने के लिए कुछ साधन को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जो भौतिक दुख को निवारण करने का साधन जो है वो साधन और दुख में होता है। मान लीजिए कोई इंद्र तृप्ति किया तो उसकी वजह से बहुत दुख आता है, तो इंद्र तृप्ति की वजह से दुख आया, तो इंद्र तृप्ति से मुक्त होना है उसके लिए कुछ साधन को स्वीकार करते हैं। वो साधन जो है वो इंद्र तृप्ति से उत्पन्न हुआ दुख से ज्यादा दुखमय है। द प्रोसेस विच दे एक्सेप्ट इज मोर पेनफुल देन द रिजल्टेड फल, जिसके वजह से जिसको आप वो लोग दमन करना चाहते हैं, जिस दुख से मुक्त होना चाहते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करने की जो साधन है वो ओरिजिनल दुख है जिससे मुक्त होना चाहते उससे ज्यादा भयानक है कि नहीं। तो इसलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, किसके लिए दुखी है, बहुत एक कार्यकलापों में ये वचस जो है बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्होंने कुछ बोल दिया, आप ये भौतिक स्तर में आप कुछ भी अच्छा बोलो बुरा बोलो वो दुख ही मिलेगा। आप मान लीजिए कुछ को किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो क्या होगा, वो आपको बुरा कहेगा, बुरा करने के लिए सोचेगा। तो आप किसी का अच्छा करोगे, वाह तुम कितना अच्छा हो, स्तुति करोगे, दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, अच्छा ये इसका स्तुति कर रहा है उसका मतलब है मैं उनको दुख दूंगा। तो आप अच्छा भी बोलो किसी का बुरा भी बोलो, भौतिक स्तर में आपको केवल दुख ही मिलने वाला। तो ये व्यक्ति सोचा ठीक है अभी मैं आज से कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी वाणी के वजह से मुझे दुख मिल रहा है ना, तो मैं आज से मौन व्रत धारण करूंगा। ये मौन व्रत धारण करना इतना दुखमय है, वो पहले जो दुख अनुभव किया उससे ज्यादा दुखमय है। क्योंकि आप एक बार ट्राई करो, खाली आधा घंटा बिना बोले रहो, केवल आधा घंटा ट्राई करो, इट इज इम्पॉसिबल। एक जगह आजकल बड़ा प्रसिद्ध कैंप चलता है, उधर कहीं राजेश्वरी कहीं लेके जाते हैं और उनको एक जगह डाल देंगे, पूरा एक हफ्ता मौन व्रत धारण करना है तो शांति मिलेगा, अनेकों प्रकार के प्रस्ताव रखते हैं। तो उसमें एक हफ्ते के लिए 100 लोग रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद पहला दिन में ही आधा लोग निकल जाते हैं और दूसरा दिन में और आधा लोग निकल जाएंगे, ऐसे आखिरी में जो एकदम पागल होंगे वो बच जाएंगे और उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो एक हफ्ते के बाद घर में आने के बाद, अपने ऑफिस में आने के बाद, पूरा जो एक हफ्ते में जितना फ्रस्ट्रेशन था वो एक दिन में निकाल दें, है कि नहीं। ये प्रेशर कुकर में है, कितना दबा के रखोगे आप, है कि नहीं। हाँ अंदर से तो गर्मी चल ही रहा है कि नहीं। तो ये प्रेशर कुकर जैसा है, अगर आप इंद्रियों के स्वाभाविक कार्यकलापों को आप जबरदस्ती रोकेंगे, इस प्रकार है, इस प्रकार है, एक प्रेशर कुकर में पानी है उबल रहा है और स्टीम बन रहा है और नीचे आग जल रहा है, तो आपने क्या किया, ए बहुत ज्यादा आवाज करता है, बहुत डिस्टर्बेंस करता है, ये सीटी बजता है ना प्रेशर कुकर, वो सीटी के ऊपर हाथ रखे रखो, दबा के रखो, बस अभी अभी कुछ नहीं करेगा, हाँ अभी शांत है, लेकिन शांत नहीं है वो, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ऐसा फूटेगा, सीटी के ऊपर हाथ रखे बैठा है ना, अननेचुरल है, सीटी के ऊपर वो बजना चाहिए, अपने आप बजना चाहिए, अगर नहीं बजेगा तो जबरदस्ती आप हाथ रखोगे, वो शांति से आराम से हाथ रखो तो सीटी बजेगा नहीं, लेकिन सोचेगा अभी अभी शांत बैठा मेरा कुकर लेकिन आपको कुकर शांत नहीं बैठा, अंदर पक रहा है और ऐसा ब्लास्ट होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा घर को भी तोड़ सकता है, इतना भयानक सा उसके अंदर प्रेशर बना रहता है। तो इसी प्रकार है, हमारे इंद्रियों की जो स्वाभाविक कार्यकलाप है उसको आर्टिफिशियली जबरदस्ती उसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे वो नहीं होगा। जैसे बच्चे का स्वभाव है, बच्चे का स्वभाव है शरारत करना, बात करना ही करना, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ के रखोगे तो क्या करेगा वो, हो सकता है कुछ समय के लिए शांत रहेगा लेकिन जितना उत्पात पहले मचाता था उससे ज्यादा उत्पात मचाएगा एकदम उसको छोड़ देंगे। तो वैसे ही ये जो भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम इंद्रियों को दमन करना चाहते हैं, ये भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रियों को दमन नहीं किया जा सकता। जो करने का प्रयास करता है वो केवल मूर्ख है, क्योंकि वो साधनों को स्वीकार करने के द्वारा पहले जितना इंद्रियां वो अनियंत्रित थे उससे ज्यादा अनियंत्रित हो जाएंगे। तो एक वक्त ने कहा मैं बस अभी मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं बस कुछ सरलता चीज खाऊंगा। तो उसने कुछ साधन कुछ बनाया, एक महीना दो महीना कठोर तरीके से पालन किया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उनके मन में इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि हमेशा मौका देख रहा था। क्या मौका देख रहा था, कोई देखना नहीं चाहिए या कोई नहीं देखे, उस समय जाके पूरा ऐसा खा लेता है व्यक्ति को, उसके बाद उसका पेट दर्द नाना प्रकार का बीमार हो जाता। पहले इंद्रियोदिति करता था बीमार तो नहीं पड़ता था। अभी ये जो नहीं खाने का जो व्रत है या कुछ सूखा चीज खाने का व्रत स्वीकार करने की वजह से क्या हुआ, तो उनका वो इंद्रिय तृप्ति करने की जो लालसा है वो और बढ़ गई, इतना हद तक कि और बीमार पड़ गया। तो देयर इज नो मटेरियल सॉल्यूशन टू मटेरियल प्रॉब्लम्स, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे भौतिक समस्याओं का, हमारा सबसे बड़ा भौतिक समस्या है इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति है। वी हैव अ टेंडेंसी टू एंजॉय मैटर, दैट इज अवर मटेरियल प्रॉब्लम। लोग सोचते हैं भौतिक समस्या ये है कि मेरे लिए इंद्रिय तृप्ति करने की साधन नहीं है, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मेरे अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति है, दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन ये भौतिकवादी क्या सोचते हैं, अगर उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है, कम है, वो सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाके उन्होंने कहा, एक भक्त डॉक्टर है, उन्होंने ये बात मुझे कहा। एक उनके पास एक पेशेंट आया, पेशेंट आके उनको मालूम नहीं था ये भक्त डॉक्टर है। तो उसने डॉक्टर को कहा देखो पहले मेरे मन में बहुत सारे काम वासना थी, आजकल होता नहीं है, मुझे कुछ दवाई दिए कुछ बताइए ताकि फिर से वो मूड आए। तो डॉक्टर मुझे ने कहा कि देखो लोग आजकल ऐसा सोचते हैं जो चीज प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम करके सोचते नहीं है, अगर उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको वो सोचते ही प्रॉब्लम है। समस्या नहीं रहना उसको समस्या करके सोचते हैं और समस्याओं को समस्या करके सोचते नहीं है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी भौतिक समस्या है, भौतिक समस्या मतलब यही है, टू हैव मटेरियल डिजायर्स दैट इज द प्रॉब्लम, नॉट टू हैव मटेरियल डिजायर्स इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव मटेरियल डिजायर्स। और कोई व्यक्ति बुद्धिमता से पहचान लिया कि मेरा इंद्रियतृप्ति करना करने की प्रवृत्ति है, इससे मुझे मुक्त होना है, तो ये बुद्धिमान है। लेकिन अगर पूरा बुद्धिमान है नहीं है, आधा बुद्धिमान है और प्रॉब्लम में गिर जाता है, इसलिए वन शुड बिकम 100% इंटेलिजेंट। ऐसे कहावत है ना, हाफ नॉलेज, आधा ज्ञान जो है वो खतरनाक है। वैसे ज्ञान नहीं अज्ञान ही है तो चलता है, आधा ज्ञान है तो खतरनाक है। तो आधा ज्ञानी व्यक्ति का वर्णन हो रहा है, वो ज्ञानी है लेकिन आधा ज्ञानी है, उसको मालूम है अपवर्ग को प्राप्त करना है लेकिन उसका किस प्रकार प्राप्त करना है वो सोचते हैं कि मैं भौतिक साधनों के द्वारा मैं प्राप्त करूं। जैसे साइंटिस्ट लोग भी, वो भी आधा पागल आधा आधा ज्ञानी है, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो भी प्रयास कर रहे महान से महान क्या है जानो कॉस्मोलॉजी, वो भी टेलीस्कोप लेते हैं, अनेकों प्रकार साधनों के द्वारा सोचना चाहते हैं महान कौन है और सबसे सूक्ष्म चीज क्या है, माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं सूक्ष्म चीज क्या है। लेकिन वो सबसे महान महतो महीयाम, जो अनोरणियाम महतो महीयाम, भगवान का वर्णन उपनिषद में इस प्रकार हुआ है, जो महान में महान है महतो महीयाम और अनोरणियाम, तो अणु का भी अणु है सूक्ष्म है, इन दोनों चीज को प्राप्त जानने के लिए साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका साधन क्या है, भौतिक साधन, इसलिए आधा ज्ञानी है। दे आर ज्ञानी, बट देयर हाफ नॉलेज। तो ये मौन व्रत इस प्रकार है। दूसरा लेते हैं व्रत, अनेक प्रकार को व्रत को प्राप्त व्रत को स्वीकार करते हैं। जनरली ये भूखा रहने का व्रत को स्वीकार करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इतना खाया हूँ, खा खा के बहुत मोटा हो गया हूँ या इंद्रधनुष किया हूँ, इसकी वजह से सारा परेशानियाँ हैं, इसलिए मैं अभी भूखा रहूँगा, नोइल स्टे फास्टिंग करूँगा। तो ऐसा फास्टिंग करते करते क्या होता है, और बीमार पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि फास्टिंग करने के द्वारा मेरा इंद्रिय नियंत्रण में आएंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि इंद्रिय नियंत्रण में है, नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। श्रुता, कुछ लोग सोचते हैं कि श्रुता यानी वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने के द्वारा मेरा मैं अपवर्ग को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन वैदिक मंत्रों को उच्चारण के द्वारा वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, वेदाध्ययन के द्वारा ही भगवान प्राप्त नहीं होते। वेदाध्ययन करते रहेंगे आमने बस अभ्यसनानि अरण्य रूलतम। कुछ ऐसे लोग है जो वेदों में एक्सपर्ट है, चार वेद चतुर्वेदि है, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका वेदोच्चारण जो है अरण्य रुदितम, जंगल में जाके रोने के बराबर है। जंगल में अगर रोएगा तो कौन सुनेगा, तो कुछ फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो वेदाध्ययन जो है, किस प्रकार वेदाध्ययन, भगवान की भक्ति के बिना वेदाध्ययन जो है वो भी बेकार है। तो तपो व्रता तपस्या और अध्ययन और अनेकों प्रकार के अध्ययन, स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, और व्याख्या अनेकों अनेकों शास्त्रों के और व्याख्या करना, रहा अकेले एकांत स्थान में रहना, और मन ही मन में जप करना, और समाधय जप समाधय शांति से एकांत में जप करना, ये सब चीजें जो है अपवर्ग्या, ये अपवर्ग को प्राप्त करने की जो प्रयास है इन साधनों के द्वारा, वो किसके लिए है, तो अजितेंद्रियाणाम, वो अजितेंद्रियाणाम उनके लिए है। अजितेंद्रियाणाम का अर्थ क्या है, जो लोग इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए असमर्थ है, उन लोगों के लिए यह साधन है। जो इंद्रियों को वश में रखने के लिए असमर्थ है उन लोगों के लिए यह साधन मात्र है। यानी दूसरे शब्दों में ये साधन को स्वीकार करने के बाद भी उनके इंद्रियां अनियंत्रित ही रहेंगे, वो नियंत्रण में नहीं रहेंगे। सरल रूप में बात प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को कभी नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, वो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का 10 प्रकार के साधनों को वो स्वीकार करते हैं। वो किसके लिए करते हैं, इधर एक शब्द है इस श्लोक में, रथा भवंती उतः, ये उतः शब्द का प्रभुपादित अनुवाद करते हैं एज ए उत भवंती उतः नवा अत्र इंद्रियाणाम वार्ता दीज डिफरेंट मेथड्स ऑफ लिबरेशन आर जनरली ओनली फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस कौन सा शब्द है, धम्बिका नाम इंद्रियाणाम अतः ये उतः शब्द ही है। ये उतः जो शब्द है इसका अर्थ है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस का अर्थ क्या है, वो लोग सोचते हैं कि बस मैं ये सब साधनों को स्वीकार करूंगा और लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि मैं इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा हूं। तो इसके विषय में प्रभुपाद जी एक श्लोक में बक्सन ठाकुर का वैष्णव के ये ग्रंथ से एक श्लोक को कोट करते हैं, दुष्ट मना सॉरी ये मानस शिक्षा से वैष्णव के से नहीं, दुष्ट मना तुम्हें किसे रे वैष्णव, हे मन तुम किस प्रकार का वैष्णव हो। वैष्णव के में भी ये श्लोक है, एक शब्द एक ग्रंथ वैष्णव के, कौन वैष्णव है उसके अंदर से एक श्लोक है, कि प्रतिष्ठा तारे निर्जन धारे तव हरि नाम केवल कहकर। कुछ ऐसे बंगाल में कुछ लोग हैं और ऐसे अपने आप को गौड़िया भी प्रस्तुत करने वाले कुछ लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो वैसे मन में बहुत सारे इंद्रत्व की विचार भरा हुआ है लेकिन लोगों के सामने प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो अकेले एकांत में जाएंगे, गुफा में जाके वो जप करने का नाटक करेंगे ताकि सब लोग आके पता लगे अरे ये तो अकेले अकेले में एकांत निर्जन भजन करता है, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि महान वैष्णव है तो उनको जाके प्रणाम करेंगे। तो वैसे लोगों को क्या कहा गया है, उनका जो जप है हरिनाम केवल कैतव, जिस हरिनाम का वर्णन शास्त्रों में अनेकों जगह बड़े बड़े तरीके से हुआ है लेकिन उसी हरिनाम को क्या कहा गया इधर, तुम्हारा जो हरिनाम का जप है केवल कैतव, केवल नाटक। क्यों? क्योंकि लोगों का यश प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, एकांत स्थान में जा रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ में हरिदास ठाकुर एकांत स्थान में जप करते थे, लेकिन एकांत स्थान में जप करना हरिदास ठाकुर के लिए उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि वो सिद्ध अवस्था पहुंच चुके हैं, उनके हृदय में कोई इंद्रियतृप्ति की भावना है ही नहीं। लेकिन जब तक हृदय में इंद्रियतृप्ति की भावना है ये निर्जन भजन जो है हमारे लिए संभव नहीं है। तो कुछ भक्त लोग ऐसा विचार रखते हैं कि कभी कभी कुछ तकलीफ आता है अपने जीवन में, या तो मंदिर में रहते हुए या सेवा में, तो लोग सोचते हैं बस ये सब झंझट से छोड़ना चाहता हूँ, मैं अकेले में जाके भजन करूंगा। लेकिन वो जो प्रकार का विचार छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे अभी भी पैशन यानी अभी भी रजोगुण है और बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति करने के विचार है, उसको उससे मुक्त होने के लिए केचित केवल या भक्तिया शुद्ध भक्ति में अपने आप को लगाना है। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? अपने इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक में क्योंकि तात्पर्य में कहते हैं कि सर्वोपाय विमुक्तम तत्रत्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और ये हरिनाम का जप करना, ये दोनों साधनों को स्वीकार करना चाहिए। ये भागवत विधि और पंचरात्रि विधि, ये दोनों को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना, ये हमारे लिए उचित साधन है। इसलिए आचार्य हमको मंदिर दिए, मठ दिए, विग्रह दिए, श्री विग्रह आराधन नित्यनाना, ये क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रिया नियंत्रण में रहे। अगर हरिनाम ही सब कुछ है तो हरिनाम दे के छोड़ देते, मठ क्यों बनाए, विग्रह की स्थापना क्यों किए, why did this, ये सब क्यों किए? क्योंकि हमारी इंद्रिया नियंत्रण में हो इसलिए किए। क्योंकि मालूम है कि ये केवल हरिनाम जप करेगा पेड़ के नीचे बैठ के, इससे तो होगा नहीं, अगर कर भी लिया उनके मन में विषय वासना नहीं जाएगा। तो इसलिए दोनों विधियों को दिए, भागवत विधि, भले ही भागवत विधि ही हमारा मूल है, हमारा श्रेष्ठ भागवत विधि है, लेकिन पंचरात्रि विधि भी क्यों दिए? इसलिए दिए ताकि हमारे इंद्रियां नियंत्रण में हो। इसलिए हमको ये कुछ आर्टिफिशियल मीन्स मतलब कोई भौतिक साधन जो है जिसके द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण रखने का प्रयास करना, ये भक्तों को त्याग करना चाहिए। अगर ये साधनों को स्वीकार करता है, आर्टिफिशियल मीन्स जो इस प्रकार का जो 10 विधि में एक एक विधि को स्वीकार करता है भक्ति के बिना, अलग से कुछ सोचता है कि इसके द्वारा मैं इंद्रियों को नियंत्रण करूंगा, ये उनकी भक्ति मूर्खता है। ये शुद्ध भक्ति के पद से वो च्युत होता है। भक्तिनाथ ठाकुर भजन रस में लिखते हैं, जो भक्त सोचता है भजन के अलावा कोई और साधन को स्वीकार करने की आवश्यकता है मेरे भजन को और अच्छा तरीके से करने के लिए, भजन को अच्छी तरह से करने के लिए कोई और साधन की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनी अदर प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू टेक अप डिवोशनल सर्विस पीसफुली, जिसके द्वारा हमारे इंद्रिय अपने आप नियंत्रण में आता है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन अन्य साधनों को स्वीकार करेंगे तो लगता है शुरुआत में थोड़ा सा कम हुआ, इंद्रिय शांत है, लेकिन ये कभी नहीं होने वाला। तो इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में थोड़ा सा कहेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु में को चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए श्रीरंगम में, तो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्वाभाविक आकर्षण वह चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु उनको रोज बुला के अपना उच्चिष्ट प्रदान करते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में उनको खूब उनका सेवा किया। जब पहली बार बल्लभ गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ, वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में लेके आ रहे थे, यू आर ब्रिंगिंग हिम, रास्ते में सब लोग चैतन्य महाप्रभु का भाव विभोर कीर्तन को देखते हुए, नृत्य को देखते हुए सब चकित हो गए। श्रीरंगम मंदिर में ऐसा उनको लग रहा था एक सोने का पहाड़ अपने मंदिर में आ गया हो श्रीरंगम में, क्योंकि पहाड़ के जैसे महान शरीर थे उनका, चैतन्य महाप्रभु का, सब लोग चकित हो गए थे। तो अचानक चैतन्य महाप्रभु प्रेमाश्रु को बहाते हुए नृत्य करते हुए आ रहे थे, अचानक उनको लगा कि कोई उनका चरण पकड़ लिया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेमाश्रु को निकाल के उन्होंने देखा, छोटा सा बालक था, उनका परिचय किसी ने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा कौन है। हो गोपाल भट्ट, उठो, उन्होंने कहा, सर गोस्वामी ने गोपाल भट्ट है, कहा गोपाल भट्ट उठो। गोपाल भट्ट ने कहा नहीं, मैं नहीं उठूंगा। उनका चरण को पकड़ के रहे, चरण को छोड़े ही नहीं, ही नॉट लीव द फीट ऑफ चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु तीन चार बार बोलने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, गोपाल भट्ट ने कहा कि नहीं बच्चा नहीं, उस समय कितना उनका, ही वॉज जस्ट 1511 में चैतन्य महाप्रभु गए श्रीरंगम, 1510 में संन्यास किए, 1511 में वो पहुंचे श्रीरंगम, और गोपाल भट्ट गोस्वामी 1503 में उनका जन्म हुआ। उस समय कितने साल, 8 साल का बच्चा, 8 ईयर्स 7 8 ईयर्स, 8 साल का बालक चैतन्य महाप्रभु चरण पकड़ के बोलते हैं मैं आपको इस प्रकार देखना नहीं चाहता, क्योंकि एक भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु का संन्यास रूप में देखना नहीं चाहता। ये संन्यास मतलब क्या, बहुत निष्ठा कठोरता को पालन करना होता है, तपस्या करना होता है। लेकिन भक्त क्या सोचते हैं, भगवान को मैं भोग दूं, और भगवान को तपस्या करते हुए भक्त देख नहीं सकता। तो सारे बंगाल में अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास का चित्र का डेटी का पूजा होता है, कहीं नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि भक्त लोग देख नहीं सकते भगवान तपस्या करते हुए। अपना प्रिय व्यक्ति कष्ट को सहते हुए देख सकता है कोई, नहीं देख सकता, कैन नॉट डू दैट। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी एकदम, आपको इस प्रकार देख नहीं सकता, मुझे आप अपनी ओरिजिनल रूप में दर्शन दो। तब उनके सर के ऊपर हाथ रखते उन्होंने बोला उठो। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी उठे, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, अभी श्रीरंगम नहीं था, कावेरी नदी था, गंगा नदी था, और चैतन्य महाप्रभु भी पंच तत्व के रूप में वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, ये पूरा दृश्य गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्वाभाविक आकर्षण चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और चैतन्य महाप्रभु जब अभी श्रीरंगम में चतुर्मास के बाद जब जा रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत महत्वपूर्ण 3 आदेश दिए, कि सारे बच्चों को ये 3 आदेश स्वीकार कर सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा, अपनी माता पिता का बहुत अच्छा सेवा करो। दूसरी बात कहा कि तुम शादी मत करना। तीसरी बात उन्होंने कहा, जब तुम्हारे माता पिता मर जाएंगे, तुम वृंदावन आके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सेवा, ये 3 आदेश उन्होंने दिया। बहुत अच्छा आदेश है, जो भी 7 8 10 साल का बच्चा मिलता है उनको आप वो आदेश दे सकते हैं। बोनोफाइड। पहला क्या है, माता पिता अच्छा थे, वाह माता पिता अच्छा लगते, वाह वेरी गुड। दूसरा क्या है, शादी मत करना थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा क्या है, मरने के बाद आ जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता इस प्रकार सोचे नहीं। तो जब ये मृत्यु होने वाला था माता पिता का, ने कहा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को, तुम जाओ रूप रघुनाथ के उनका आशीर्वाद देके भेजे। निश्चय गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सुंदर अनेकों ग्रंथों का रचना किया, समय नहीं है चर्चा करने का। राधा रमन विग्रह का उन्होंने स्थापना किया। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह शालिग्राम शिला से वो गंडकी नदी के जब गए थे, नहा के जब बाहर आए, अपने आप शालिग्राम शिव उड़ के अपने जो गोद में मर रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वापस नदी में डाल रहे थे, ऐसे 3 4 बार हुआ, 12 शालिग्राम शिला अपने आप उड़ के उनके पास आ रहे थे। अब देखिए भगवान कितने आतुर है भक्तों से सेवा स्वीकार कर रहे हैं, इसे पता लगता है। स्टोरीज गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाप्त करेंगे। में भागवतम की भाग की जाए।
Is that a...